आज का रात्रि क्लास है। इक्कीस अक्टूबर 1967। बच्चे और बच्चियां बैठी हैं, इस विचार से बैठी है कि बाबा आया कि आया, बाप दादा आया कि आया, नाम ही प्रजापिता है। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शिव बाबा है रूहानी पिता। बिंदु बिंदु रूहों का बाप और प्रजापिता, शिव बाबा तो रूहानी बाप है, रूहों का बाप है और प्रजापिता देह अभिमानियों का बाप है। प्रजापिता जो 500-700 करोड़ प्रजापिता प्रजा है उन सब का बाप है। तो देखो, एक रूहानी बाप और एक जिस्मानी बाप, जिस्मधारियों का बाप और रूहों का बाप, या यूं कहें एक देहधारियों का बाप जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, और एक रूहानी बाप भले देहधारी में आता है तो भी रूहानियत की बुद्धि रहती है, देह में बुद्धि नहीं जाती, वो है रूहानी पिता। अब किसकी याद में बैठना चाहिए? रूहानी बाप की याद में बैठना चाहिए या जिस्मानी बाप की याद में बैठना चाहिए? जिसकी याद करेंगे वैसे ही बन जावेंगे, जिस्मानी बाप को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन जावेंगे, रूहानी बाप को याद करेंगे तो रूह ज्योतिबिंदु आत्मा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जावेंगे। अर्थ सहित सब बातें बुद्धि में रखनी पड़ती हैं। रूहानी बाप, जिस्मानी बाप, बाप आते हैं इस रथ पर, ज्ञान तो सब के लिए है, बाप सब आत्माओं के लिए कहते हैं देह अभिमान छोड़ मामे कम याद करो। जो कहते हैं वो गाया ही जाता है निराकारी बाप, कहते तो देहधारी बाप के द्वारा है लेकिन कहने वाली आत्मा निराकारी बाप है, भगवान निराकार है, यूं उनके बच्चे भी निराकार हैं, यूं निराकार हैं, माना इस तरह तो निराकार हैं, फिर उस तरह निराकार है या देह में बुद्धि धरी रहती है? निराकारी दुनिया से आते हैं, निराकारी बाप भी आते हैं, आत्माएं भी आती हैं जो देह धारण करती हैं। एक ही लोक से आते हैं, फिर एक रूहानी और बाकी सब जिस्मानी क्यों बन जाते? क्योंकि एक जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है और सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। यहां इस दुनिया में उनको जैसे कि ये शरीर है ही नहीं, किनको? निराकारी बाप को। आसुरी गुण होते हैं कलयुगी दुनिया में, सतयुगी दुनिया में मनुष्यों में दैवी गुण होते हैं, उनको देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं कहा जाता। क्या अंतर हो गया? देह सतयुग में भी होती है और देह कलयुग में भी होती है, अंतर क्या पड़ गया जो उनको देवता कहा जाता है और उनको मनुष्य कहा जाता है? उनको देवता इसलिए कहा जाता है कि वो देने वाले हैं, दूसरों को सुख देने वाले हैं, कोई को दुख देने वाले नहीं है। देवान से होता है दुख और आत्माभिमान से होता है सुख। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में हैं, बच्चे जानते हैं, अभी नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं मनमना भव मद्यादि भव। पहले मनमना भव क्यों? मेरे मन में अपने सारे संकल्पों को तिरोहित कर दे, मनमना भव मेरे मन में समा जा, ये पहले क्यों? जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा धन होगा, ये हिसाब है। फिर अरस परस भी है। चलो मन किसी का कमजोर है, चंचल है, एक में नहीं लगा सकता है। फिर अगर अपने धन को और अपने तन को, तन के संबंधियों को, तन के संपर्कियों को उसे एक की सेवा में अर्पण कर दे, दे दे, तो उसका मन कहां जावेगा? जहां हमारा धन जावेगा वहां मन जावेगा, जहां तन की शक्ति जावेगी वहां मन की शक्ति जावेगी। मन जरूर जावेगा, मन जावेगा जैसे आत्मा पहुंच गई। इसलिए वेदों में भी लिखा है मन रेव आत्मा। फिर मद्यादि भव स्वतः हो जाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। कृष्ण को बाप नहीं कहते हैं। किसको बाप कहते हैं? राम को बाप कहा जाता है, कृष्ण को कहीं भी बाप? कृष्ण तो बच्चा है। मतलब क्या हुआ? कृष्ण की आत्मा अपने 84वें जन्म में जो अंतिम चोले से पार्ट बजाती है, वो जैसे बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है। राम वाली आत्मा बच्चा बुद्धि का पार्ट नहीं बजाती, इसलिए मुरली में बोला है इस समय गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इस समय माने किस समय? जिस समय ब्रह्मा बाबा के मुख से मुरली चलाई जा रही थी, उस समय लास्ट में बोला कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत जो है वो मंथन करने के बाद अमृत कहा जाता है। ब्रह्मा के मुख से मुरली तो चलाई गई, लेकिन मुरली का मंथन नहीं हुआ। जैसे कोई बच्चा होता है प्राइमरी स्कूल में, उसको कबीरदास के, तुलसीदास के, सूरदास के दोहे, चौपाइयां, कवित्त रटाई दिए जाते हैं। रट तो लेता है, लेकिन उसके गुह्यार्थ को नहीं समझता। जब हायर क्लासेस में पहुंचता है तो एक एक शब्द के गुह्यार्थ में जाते हैं। इसलिए बोला कृष्ण तो बच्चा है, कृष्ण को बाप नहीं कहा जाता। फिर भगवान की वाणी ब्रह्मा के मुख से आई और उस पर मनन चिंतन मंथन हुआ नहीं, तो उसका सही अर्थ बुद्धि में बैठेगा? समझाई नहीं किसी ने? जैसे 76 की बात बोली 66 में, आने वाले 10 वर्षों में दुनिया का विनाश हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। ब्रह्मा के मुख से बोला, ब्रह्मा ने क्या समझा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या समझा? सीधा सीधा स्थूल अर्थ समझ लिया। ये बुद्धि में नहीं आया कि मुरली में दूसरी जगह ये भी बोला है कि विनाश ज्वाला ऐसे रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई, या बाहर की दुनिया से प्रज्वलित हुई है? यज्ञ से प्रज्वलित हुई माने ब्राह्मणों की दुनिया के लिए बाबा सारी बातें बोल रहे थे, बाहर की दुनिया के लिए बाबा पढ़ाने के लिए नहीं आया है। तो ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो मुरली का गुह्यार्थ बेसिक नॉलेज वालों के सामने क्लियर नहीं होता। वो ही बेसिक वाले बच्चे जिनके लिए हर मुरली में ये डायरेक्शन दिया जाता है, मन मना भव, रूहानी बाप को याद करो, अपने को रूह समझो। तो जिन्होंने अपने को बिंदु समझा और बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु शिव को याद किया, उनकी बुद्धि सूक्ष्म बन गई। सूक्ष्म को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? सूक्ष्म बनेगी। सूक्ष्म ज्योति बिंदु चैतन्य आत्मा को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? जड़ बनेगी या चैतन्य बनेगी? चैतन्य बनी। अब उनके मुकाबले जिन्होंने ब्रह्मा की देह को याद किया, ब्रह्मा की गोद को याद किया, जिन्होंने अनुभव लिया देहधारी का, मुरली सुनते समय ब्रह्मा बाबा देखने में आता था, मुरली की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। तो जिन्होंने देह का सुख लिया और देह के सुख में रमण करने लगे, उनके लिए मुरली ने क्या बोला, बच्चे किसकी गोद में आए हो? तो जो बच्चे कहते थे बाबा हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, कौन तो कहते पास, और जो कहते ब्रह्मा बाबा की गोद में आए तो ब्रह्मा को याद किया तू फेल। इसलिए मुरली में बोल दिया कि ब्रह्मा के चित्र को भी नहीं रखना है, चित्र को भी याद करेंगे तो चरित्र की याद आवेगी, चाहे ब्रह्मा हो कृष्ण वाली आत्मा हो और चाहे राम वाली आत्मा हो, अंतिम जन्म का जो चोला है वो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है, तमो प्रधान है। इसलिए मुरली की शुरुआत की लाइनों में ये बात बोली, रूहानी बच्चे रूहानी बाप को याद करें। तो जिन्होंने ये प्रैक्टिस की सूक्ष्म को याद करने की, सूक्ष्म आत्माओं के बाप को याद करने की, उन आत्माओं की प्रैक्टिस पक्की होने से उनकी आत्मा की बेसिकली सारी कट उतर गई। इसलिए मुरली में बोला आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्यों? ब्रह्मा के तन से जो वाणी चलाई, जो कार्य किए, जो पार्ट बजाया, वो डायरेक्ट बाप का पार्ट नहीं था, वो डायरेक्ट बाप टीचर सतगुरु नहीं था क्या? बाप से क्या मिलता है, वर्षा माना क्या,
इसी शरीर से मुक्ति और जो
मिलती, वर्षा माना सुख और शांति का वर्षा मिलता है बेहद की बाप से। ये कोई भी धर्म पिता है सुख शांति का वर्षा नहीं दे सके, 2500 वर्ष की हिस्ट्री ये बताती है। सब इस सृष्टि पर आए और दुख की दुनिया में लौट गए, दुनिया और ही ज्यादा दुखी होती चली गई, किसी को सुख शांति के वर्षे की अनुभूति नहीं हुई। एक ही रूहानी बाप है, जब इस सृष्टि पर आता है बाप के रूप में, टीचर के रूप में क्लैरिफिकेशन देता है, एक एक शब्द का वाक्य का हिज्जे हिज्जे करके समझाता है, और गुरु के रूप में मन बुद्धि की सदगति करता है, मन मन बुद्धि गतिशील हो जाती है, बुद्धि जामड़ी न रहे गतिशील हो जाए, मनन चिंतन मंथन वाली हो जाए। जिन अर्थों में कहा जाता है मनुष्य मनु की औलाद, मनु माने ब्रह्मा, तो असली अर्थों में जब हम श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण बने तब सब पुरुषार्थ करते करते संपन्न स्टेज पर पहुंच करके संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता बन सकते हैं। तो डायरेक्ट बाप से सीखना कब होता है? जब आत्मा रूपी सुइयों की कट उतरती जाती है, तो जिनकी जिनकी कट उतरती जाती है वो एडवांस में क्लास ट्रांसफर होते जाते हैं और वो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते, डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते, डायरेक्ट सुप्रीम टीचर से पढ़ाई पढ़ते। उनको नशा रहता है, हमको पढ़ाने वाला कौन? साधारण मनुष्य गुरु नहीं, साधारण धर्म पिताए नहीं, जो आए और धर्म स्थापन करके चले गए, वाणी चला के चले गए, चाहे वो कुरान की वाणी हो, चाहे बाइबल की वाणी हो, चाहे धम्मपद की वाणी हो, आए वाणी चला के चले गए, लेकिन दुनिया का परिवर्तन नहीं हुआ। उसी लिस्ट में ब्रह्मा बाबा भी आ गए। क्या करके गए? आए वाणी चला के चले गए, परिवर्तन? परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। तो बाप परिवर्तन करके जाते हैं। कहते बच्चे मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ खेलेंगे, खाएंगे और साथ साथ वापस घर जाएंगे। जो मम्मा बाबा के समय के बने हुए चित्र हैं, उनमें कोई ऐसा चित्रण किया गया है कि साथ में घर जाते हुए दिखाया गया हो? है कल्प वृक्ष झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर का चित्र दिया हुआ है। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा करके ले जाऊंगा, मना? इस पूरे शरीर के अंदर कौन सा अंग होता है जो सबसे जास्ती सेंसिटिव होता है? आंखें। तो दृष्टि से सृष्टि सुधरने की बात है, लेकिन मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधरती। किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? स्वयं भगवान बाप इस सृष्टि पर जब आता है, तब उसकी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी दृष्टि से सारी सृष्टि सुधरती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप बाप के रूप में आते हैं। कृष्ण तो बच्चा है, मुरली में कहीं भी ये नहीं कहा कृष्ण बाप को कहा जाता है, कहीं बोला नहीं? सदैव क्या बोला? कृष्ण, कृष्ण बच्चा है। यहां संगमयुग में भी बच्चा है और वहां सतयुग में भी बाप का बच्चा होगा। उसकी बच्चे की बच्चा बुद्धि ये नहीं चलेगी कि सतयुग में पैदाइश कैसे होगी। जो बाप का पार्ट होगा उसकी बुद्धि में ये बात चलेगी कि सतयुग में पैदाइश कैसे होगी। या बाप समान जो भी बच्चे होंगे नई सृष्टि को जन्म देने वाले, उनकी बुद्धि में भी ये बात चलेगी कि नई दुनिया कैसे तैयार होनी है, प्रोसीजर क्या होगा, प्लानिंग क्या होगी, उनकी बुद्धि में वो बात ऑटोमेटिक चलेगी। तो बोला कृष्ण को बाप नहीं कहते हैं, तुम बच्चे किसको भी समझाओ, चाहे कोई सन्यासी हो या कोई भी हो, पहले ये मंत्र दो। कौन सा मंत्र? बन्मना भव, मेरे मन में समा जा। ये कहने वाला कौन? इसके मन में समा जा ये नहीं कहा। किसके मन में? ब्रह्मा के मन में, नहीं है तो घोड़ा है। त्रिमूर्ति में उन्होंने तो तीन शेर दिखा दिए, लेकिन बाप क्या कहते, वास्तव में त्रिमूर्ति में एक घोड़ा है, एक बकरी है और एक शेर है। तो मन को क्या कहा जाता है, घोड़ा कहा जाता है। ये मन किसके वश में होना चाहिए, मन रूपी ब्रह्मा है तो ब्रह्मा रचना है या रचेता है? ब्रह्मा क्या है, रचना है। नाम ये ब्रह्मा, ब्रह्म माने मणि, मां माने मां, माने बड़ी मां। तो बड़ी मां को बनाने वाला कौन, बाप। तो मुरली पूछते भी है, इसे ब्रह्मा का बाप कौन, इतने कोई नहीं बता सकेगा तुम बच्चों के सिवाय। हमारी बुद्धि में है कि जब से यज्ञ के आदि में ये ज्ञान की बातें शुरू हुई, सत्संग शुरू हुआ, तो ब्रह्मा की बुद्धि में ये बैठाने वाला कौन कि तुम कृष्ण की आत्मा हो। नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, उनके साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन किसके द्वारा हुआ, बाप के द्वारा हुआ। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचे नंबर में आवेंगे। तो कोई थे ना बच्चे यज्ञ के आदि में जिनका मम्मा बाबा जैसी श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर भी आधिपत्य था, अधिकार जमा करके बैठते थे। संगम युग के आदि में भी कृष्ण बच्चा था, राम वाली आत्मा बाप थी, और सतयुग के आदि में भी राम वाली आत्मा बाप ही होगी और कृष्ण वाली आत्मा बच्चा ही होगी। तो पहले पहले यह मंत्र कोई कोई भी दो कि ये कहने वाला कौन है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, इनके मन में नहीं समा जा। अगर ब्रह्मा के मन में समा गया तो गति क्या होगी, है? ब्रह्मा के मन में अगर समा गया तो सत्युग में जाके जन्म मिलेगा। इस सृष्टि में नर से नारायण डायरेक्ट नहीं बनेगा, और बाप ने लक्ष्य क्या दिया है, नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो ब्रह्मा बाबा के लक्ष्य में, कृष्ण वाली आत्मा के लक्ष्य में और राम वाली आत्मा के लक्ष्य में बहुत अंतर हो जाता है। एक वर्षा प्राप्त करती है रूहानी बाप से डायरेक्ट, और दूसरी आत्मा वर्षा प्राप्त करती है मनुष्य सृष्टि के देहधारी बाप से डायरेक्ट। हालांकि उस समय वो देहधारी होता नहीं है, क्योंकि बाप कहते हैं मैं जब आता हूं, भगवान जब आते हैं तो क्या बनाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, आप समान बना के जाते हैं। बाप स्वयं निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, तो बच्चों को भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाता है। और कहां तक निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाता है, जो उपलब्धि बड़े ते बड़ी बताई, जो उपलब्धि और किसी धर्मवंशियों को नहीं हुई, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख का मतलब इंद्रियों से परे का सुख। लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण खड़े हैं नीचे और लक्ष्मी नारायण खड़े हैं ऊपर, ज्ञान के प्रकाश की दुनिया में खड़े हैं और राधा कृष्ण को सती की दुनिया में खड़ा हुआ दिखाया गया। राधा कृष्ण एक दूसरे को दृष्टि से देखते हैं, उनका प्यार इंद्रियों तक समाया हुआ है या अतिंद्रिय सुख का कहेंगे, इंद्रियों के सुख में समाया हुआ है। उनके द्वारा जो भी सृष्टि पैदा होगी बल श्रेष्ठ सृष्टि है, श्रेष्ठाचारी इंद्रियों की शक्ति सृष्टि है, लेकिन फिर भी अतिंद्रिय सुख की सृष्टि नहीं कही जाएगी। कैसे सुख की सृष्टि कहेंगे? इंद्रियों के सुख वाली सृष्टि। तो इंद्रियों का जो सुख है, चाहे भले श्रेष्ठाचारी इंद्रियां हो, वो नीचे गिराने वाला होगा या ऊपर उठाने वाला होगा? नीचे गिरा, बल चौथाई कला पहले जन्म में नीचे गिरती है, लेकिन फिर भी नीचे तो आना होता है ना। और जो लक्ष्मी नारायण है वो एक दूसरे की तरफ दृष्टि से भी नहीं देखते, उनका अतिंद्रिय सुख है, माने इंद्रियों से परे की स्टेज का सुख है। न ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगते हैं, न कर्म इंद्रियों से सुख भोगते हैं, ऐसा वाइब्रेशन मात्र से एक दूसरे का प्यार खींचने वाले हैं। जैसे कि दिल से दिल को राहत होती है, देह का अंश मात्र भी देह भान नहीं, ऐसी सृष्टि स्थापन करने के लिए वो रूहानी बाप आता है। किसमें आता है? जो भी देह अभिमानी मनुष्य है उन देह अभिमानी मनुष्यों के बाप में आता है। तो देह अभिमानियों का जो बाप है वो ही 100% आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए तो फिर दुनिया बचेगी क्या? दुनिया भी रूहानी हो जाएगी। तो संगम युग, इसको नाम दिया है पुरुषोत्तम संगम युग। जो भी पुरुषों में उत्तम से उत्तम आत्माएं हैं उनकी यादगार रुद्र यज्ञ रचा जाता है। उस रुद्र यज्ञ में लाख दो लाख शालिग्राम बनाते हैं सारे दिन में। उत्तम से उत्तम आत्माएं हैं, लोग शालिग्राम को भगवान समझ लेते हैं, भगवान नहीं होते, भगवान आकर उनको आप समान भगवान भगवती जैसा बनाए देते हैं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो बताया कि तुम किसको भी समझाओ, चाहे सन्यासी आओ या कोई भी हो, पहली पहली बात यही समझाओ कि रूहानी बाप को याद करो। राम और कृष्ण ये रूहानी आत्माएं नहीं है, रूहानी बाप नहीं है। अगर ये रूहानी बाप होते तो 63 जन्म में भी इस सृष्टि को पावन बनाया होता। 63 जन्म में खुद भी गिरते गए और इनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरते गए। अच्छी रीति समझाए कर निश्चय कराए कर लिखो। कि हम इस बाप के बच्चे हैं, इस बाप के क्या निश्चय करा के लिखो। अच्छी रीति क्या निश्चय कराओ? कि हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं, वो ही पतित पावन है। यह पतित पावन नहीं है, पतितों को पावन बनाने वाला यह ब्रह्मा नहीं है, या वो त्रेता वाला राम भी नहीं है। दो आत्माएं हैं ना, एक है जन्म मरण के चक्र में आने वाली और एक है जन्म मरण के चक्र से सदैव बनियारी, देह में प्रवेश करती है, देहधारी की इंद्रियों को यूज भी करती है, लेकिन यूज करने के बावजूद भी आंखें जैसे देखते हुए नहीं देखती, कान जैसे सुनते हुए नहीं सुनते, सारी दुनिया ग्लानी करती है, कलंकी धर नाम ही प्रसिद्ध हो गया, कलंक लगाती है, सबसे ज्यादा ग्लानी किसकी होती है? ब्रह्मा की सबसे ज्यादा ग्लानी होती है या शिव बाबा की? शिव बाबा की सबसे ज्यादा ग्लानी होती है। ब्रह्मा बाबा अपनी ग्लानी को सहन नहीं कर पाते, हार्ट फेल हो जाता है। जब उन्हें यह पता चलता है कि मेरे बच्चे ने ही मेरे को धोखा दे दिया, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाए लिया, उसमें मेरा नाम निशान भी गायब कर दिया, तो बाबा की आत्मा ये सहन नहीं कर पाती। और शिव, शिव 500 करोड़ मनुष्य मात्र में से एक भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसकी एक्ट को, जिसकी वाचा को सहन न करता हो। वो सागर है, सागर में सब कुछ समाया जाता है, वही पतित पावन है और सर्वशक्तिवान भी है। बच्चों को अच्छी रीति सिखाना है, क्या बात कि वो बाप कौन है, किस रूप में आया हुआ है, अरूपी है या कोई रूप है, रूपवान है, निराकार है फिर भी कोई साकार में आकर के प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने। कोचिंग देनी है, क्या कहा है, आत्माओं को ट्यूशन देनी है। सब आत्माओं का एक ही बाप है, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सब आत्माओं का एक ही बाप है। आत्माएं पुनर्जन्म में आती है, जन्म लेती है और फिर मरती है, वेद का भी अर्थ है। संगम युग में जन्म लेने और मरने का बेहद का अर्थ क्या होता है? हाँ, आत्मा को अपने बाप परमपिता परमात्मा का निश्चय हुआ कि अमुक तन में आया हुआ है, मुकर्रर रथ में, सर्वव्यापी नहीं है, दुनिया कहती है सर्वव्यापी है, कहती है या नहीं? लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे कहते हैं वो सर्वव्यापी नहीं है, क्या है? एक व्यापी है। वो तथाकथित बेसिक वाले ब्राह्मण भी क्या कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उनसे पूछा जाए सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहां है, तो इसका जवाब नहीं दे सकते। इसका मतलब वो भी दुनिया में ही रम जाते हैं, अंदर से प्रश्न का जवाब उनको नहीं मिलता, या पक्का बुद्धि में निश्चय बुद्धि नहीं बन पाते कि एक बाप कैसे है। तो कोचिंग देनी है कि आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं, माना निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। संगम युग में निश्चय के चक्र में आना माना जन्म लेना, निश्चय बुद्धि हुआ कि इस दुनिया में परमपिता परमात्मा का साकार रूप गीता का भगवान यह है, जो सारी सृष्टि का कल्याण करके वापस जावेगा, बीच में वापस जाने वाला धर्म पिताओं की तरह नहीं कि आया राम गया राम हो जाए, वो सारी सृष्टि को परिवर्तन करने वाला है, बीच में जाने वाला नहीं है। तो आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं, चाहे हद का जन्म मरण का चक्र हो और चाहे बेहद का हो। ये उस बाप की पहचान है। क्या पहचान? जो सुप्रीम सोल बाप का पार्ट होगा साकार में इस सृष्टि पर, सारी मनुष्य शक्ति के प्रजापिता में जो पार्ट होगा परमपिता परमात्मा का, वो पार्टधारी कभी अनिश्चय के चक्र में नहीं आवेगा। और जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं कितनी भी ज्ञानी क्यों न हो, कितनी भी महान क्यों न हो, धर्म पिताओं की ही आत्माएं क्यों न हो, सब जन्म मरण के चक्र में आती है। माना आज निश्चय करती है कि बाप आया हुआ है और कल माया उनकी ऐसी परीक्षा लेती है कि सब डांबाडोल हो जाते हैं। इसलिए आसमान में आत्मा रूपी जो सितारे दिखाए गए हैं उनका पर्सनिफिकेशन इस सृष्टि की हम ब्राह्मणों से किया गया है। एक ही ध्रुव तारा है जो अपने स्थान पर अटल रहता है और बाकी सब अपना स्थान छोड़ देते हैं, सब चक्कर काटने वाले हैं, एक चक्कर काटने वाला नहीं है। तो आत्माएं सब पुनर्जन्म के चक्र में आती है। जो परम आत्मा है, कैसी आत्मा? परम। किसके साथ टैली किया गया? जो और दूसरी आत्माएं हैं उनके साथ टैली किया कि वो आत्मा परम आत्मा है, और जो भी आत्माएं हैं उनके बीच में ही है लेकिन परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है। और वो हीरो पार्टधारी के लिए इस ब्राह्मण संगमयुगी जन्म में ये बात जरूर लागू होगी। क्या? कि और सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आवेंगे, वो आत्मा निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने वाली नहीं है, माया किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या? माया भी सर्वशक्तिवान है, वो सब को ऊपर नीचे कर देती है, लेकिन जो भगवान का पार्टधारी होगा उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकती। मुख्य है तीन वतन, सूक्ष्म वतन का वातावरण, स्थूल वतन का वातावरण और निराकारी दुनिया का वातावरण। परंतु टू मच में नहीं जाना चाहिए। बोलो, प्रजापिता तो मनुष्य होगा ना, जहां प्रजा होगी वहां प्रजापिता होगा, ऐसे थोड़ी कि ब्रह्मा के तन में आकर वाणी चलाते थे तो ब्रह्मा कोई प्रजापिता था। अगर प्रजापिता होता तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम शुरुआत से क्या होता? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय होता, लेकिन नाम क्या पड़ा? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पड़ा। फिर ब्रह्मा को शरीर छोड़ना पड़ा, साकार सूक्ष्म वतनवासी हुआ। सूक्ष्म वतन में प्रजा होती है क्या? सूक्ष्म वतन में थोड़ी प्रजा रची जाती है। तो प्रजा तो इस सृष्टि पर है, प्रकष्ट रूपेण जायते इति प्रजा कहते हैं, जिसकी प्रकष्ट रूप में रचना भगवान आकर के करते हैं। कैसे करते हैं? एक एक आत्मा की बुद्धि में ज्ञान बैठता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हर आत्मा की बुद्धि में यह ज्ञान बैठ जाता है कि मैं सृष्टि रूपी रंगमंच में एक पार्टधारी हूं, मैं ये पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, इस धर्मखंड में पार्ट बजाने वाली हूं, इस टाइम पर पार्ट बजाने वाली हूं, इतने जन्म का पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। तो पक्का पक्का एक्टर बाप आकर के बनाते हैं। वो एक्टर क्या जिसको अपने एक्ट का ही पता ना चले? आत्मा है और आत्मा को अपने अनेक जन्मों का एक्ट का ही पता ना चले तो उस आत्मा को कैसा एक्टर कहेंगे? बेवकूफ एक्टर। तो हम सब आज बेवकूफ एक्टर बन गए। अभी बाप आए हैं, बताते हैं कि मुख्य एक्टर्स का पार्ट क्या है। मुख्य एक्टर्स हैं इस ड्रामा के दो, जगत पिता और जगदम्बा। बाकी और भी एक्टर्स बाई प्लॉट है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये भी एक्टर्स मुख्य हैं। तो उनका पार्ट बताते हैं। उनको बताना है कि प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और वो तुम्हारा भी बाप है, चाहे सन्यासी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो। क्या कहना है कि जिसको तुम आदम कहते हो, एडम कहते हो, हिंदुओं में आदि देव आदि नाथ कहा जाता है, वो तुम्हारा भी बाप है। उस आदम में वो अल्लाह आता है, ऊंचे ते ऊंचा पार्टधारी, और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमने ब्रह्मा को पहचाना है, तुमने ब्रह्मा को नहीं पहचाना। बाप ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा का रचयिता कौन? स्वयं बाप, सुप्रीम सोल नहीं। सुप्रीम सोल को रचयिता नहीं कहेंगे। सुप्रीम सोल जो है वो तो सदैव है, वो अविनाशी बाप है, आत्माओं का बाप है। बिंदु बिंदु आत्माएं वो कभी रची नहीं जाती, और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी कभी रचा नहीं जाता। वहां रचयिता और रचना का सवाल ही नहीं है। रचयिता रचना का सवाल तब होता है जब वो निराकार शिव साकार शरीर में प्रवेश करता है, तब कहा जाता है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ब्रह्मा तो चाहिए ना, जबकि शुद्ध से ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना होती है मनुष्य सृष्टि की, और ब्रह्मा की रचना किसके द्वारा होती है? ब्रह्मा की रचना प्रजापिता के द्वारा होती है, और ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। फिर उनके अनेक वर्णों में आते हैं। प्रदर्शनी में हंगामा होता है, उस हंगामे में बहुत कठिन है समझाना। अगर कोई को समझाना है तो उनको अलग बिठाना चाहिए। बोलो, बाप समझाते हैं, हम नहीं समझाते हैं। आपको संशय नहीं आना चाहिए। इस बात में प्रश्न उठ नहीं सकता। सारी सृष्टि का एक ही बाप है जो सत्य है, और इस झूठ खंड में सब सब झूठ है। जो भी जनरेशन से है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके बाप धर्म पिताएं झूठ खंड बना करके गए। कोई भी सच खंड बना के नहीं गया। तो बनाने वाले ही जब झूठे हो गए तो बनने वाली रचना या प्रजा सारी झूठ ही झूठ है। उन बापों का भी जो बाप कहा जाता है वो एक है, शिव रूहानी बाप। इसमें कोई को प्रश्न नहीं उठेगा। बाप सत्य ही बताते हैं, सत्य बाप आते हैं, सच खंड की स्थापना करते हैं, झूठ खंड का विनाश कराते हैं। बाकी तो सब झूठ है। भारत को सच खंड कहते थे, अभी तो भारत झूठ खंड है। तुम कहते भी हो, अच्छी रीति समझना हो तो 7 दिन का कोर्स ले लो। पूरा कोर्स लेंगे तो फोर्स भरेगा। मुसलमान आदि कोई भी हो, सबका बाप है ना। बुलाते हैं, हे पतित पावन। गांधी भी किसको याद करते थे? वो तो भारत का बापू था। वो भी कहते थे पतित पावन सीताराम। पतित पावन राधा कृष्ण तो कोई नहीं कहते। पतित पावन इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक तो कोई नहीं कहते। याद निराकार को करते हैं। फिर सीताराम, रघुपति राघव, राजा राम कह देते हैं। तुमको समझाया है, ये सब भक्त हैं। और भगवान है एक, वो भगवान सभी आत्माओं का बाप है। क्या वो देहधारियों का बाप नहीं है? सभी आत्माओं का मतलब कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, ये आत्मा है या नहीं है? ये भी तो मूल रूप में आत्मा है। उन सब का वो एक बाप है। बाप को ही भगवान कहा जाता है। ये है मूल बात समझाने की। क्राइस्ट भी देहधारी था, उसकी भी बुद्धि किस में धरी हुई थी? देह में धरी हुई थी। जिस देह में प्रवेश करता है उसके संग का रंग उसको भी लगा, वो भी नीचे गिरा, जन्म मरण के चक्र में आया। कोई भी धर्म पिता हो, जिसमें भी प्रवेश किया उस देहधारी के देह में आकृष्ट हो गया, पतित बन गया, जन्म मरण के चक्र में आने लगा। एक बाप ही है जो कोई में भी प्रवेश करते हैं लेकिन संग का रंग उनको नहीं लगता। तो क्राइस्ट भी देहधारी था, सभी धर्म पिताएं देहधारी थे, उनके अंदर भी छोटी आत्मा है। ये बातें सन्यासी आदि नहीं सुना सकते हैं। फादर कहते हैं ये बात बुद्धि में ठोक देना है। क्या? कि वो एक ही गॉड फादर है। दुनिया गॉड फादर कहती है, सुप्रीम फादर कहने से गॉड फादर के लिए ही कहा जाता है। वो ही आते हैं तो नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कौन बनाएगा स्वर्ग? नई दुनिया स्वर्ग कौन बनाएगा? पुरानी दुनिया नरक, नरक माने दुखदाई, स्वर्ग माने सुखदाई दुनिया कौन बनाता है? स्वर्ग वो ही बना सकता है जो सदाकाल स्वस्थिति में रहने वाला है, कभी भी परचिंतन में नहीं आता है, कभी भी देह के चिंतन में नहीं आता है। वो ही नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, और जास्ती कुछ भी समझाने की दरकार नहीं है। क्या कोर्स भी कोई को देते हैं तो लक्ष्य क्या रखना चाहिए? कोई भी प्रकार एक का निश्चय बुद्धि में बैठ जाए। सन्यासी कब नहीं समझेंगे? उनका दुकान ही खत्म हो जाए। उनका दुकान क्या है? उनका दुकान है भगवान सर्वव्यापी है। हम जो मठ पंथ खोले हुए बैठे हैं, हम भी भगवान है, सिवो हम, हमारी आकर पूजा करो। अगर सन्यासी समझ जावे तो उनके साथ फॉलोअर से इधर आ जावेंगे। उन सबको पता है कि गीता श्री कृष्ण भगवान की है। इनको पता है, उन सन्यासी दुनियावी सन्यासियों को या ब्राह्मणों की दुनिया के जो सन्यासी हैं उनको भी, उनको भी ये पता है, यही बुद्धि में बैठा हुआ है कि गीता का साकार भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज है, और दुनिया में कोई भी साकार गीता का भगवान नहीं हो सकता। अब तुम समझाते हो, तुम उनको समझा सकते हो कि कृष्ण उर्फ दादा लेखराज में गीता का भगवान नहीं था। क्या जो गीतापति भगवान है वो भगवान का पाठधारी ब्रह्मा का रूप नहीं था? भगवान तो दुनिया को पलटने के लिए आता है, इसलिए दुनिया में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती। क्यों? कि दुनिया सिद्धि स्वरूप को मानती है। जिसको सिद्धि नहीं मिली उसको दुनिया मानने वाली नहीं है। इसलिए विष्णु और शंकर की पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, पूजा करते हैं। जरूर कोई पूजनीय कार्य करके गए हैं तब तो उनकी पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। तो तुम समझाते हो कि कृष्ण में ज्ञान नहीं था। अरे तो कृष्ण के फॉलोअर तो हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे, तुम कहेंगे कौन में ज्ञान नहीं था, तो इस बात को मानेंगे? ओ नहीं मानने वाले। फिर उनसे पूछना चाहिए कि अगर कृष्ण में ज्ञान था तो तुम्हारे में भी आया होगा नई सृष्टि का ज्ञान, तो बताओ राधा कृष्ण को जन्म देने वाले कौन होंगे? नई सृष्टि होगी तो नई सृष्टि में राधा कृष्ण को जन्म देने वाले जो रचयिता मां बाप होंगे वो उनसे ज्यादा पावरफुल होंगे या कम पावरफुल होंगे? ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। वो कौन होंगे? उनकी बुद्धि में ये बात आने वाली नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नई सृष्टि में जन्म लेने वालों की लिस्ट में है, जन्म देने वालों की लिस्ट में नहीं है। ओम शांति।